नमस्कार भारत, तारीख 3 जुलाई दिन रविवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। हमले के बाद शोक में डूबा बांग्लादेश, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा सेक्युलर बांग्लादेश पर हुआ है हमला।
राजधानी गुलशन एक रेस्टुरेंटे हमला चलाए, সেখানে অবস্থানরত নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের অস্ত্রের মুখে।
ভারত কে পূর্বোত্তর রাজ্য মে ভি সুরক্ষা চৌকস, মহারাষ্ট্র মে ভারী বারিশ সে কিসান খুশ, লেকিন মুম্বাই ওয়ালে হ্যায় বেহাল, অর মিলিয়ে 86 সাল কি উম্র মে সরপঞ্চ বনি কুল বদন দেবী সে।
জমানি মে সবকে সেবা কেলি তো হামার মন ভেল না কি তনি বুহারি মে সবকে সমাজ কে সবকে সেবা কেলি, সবকে হামরা সেবা করে মে মন লাগতা হ্যায়।
होगा हाल विंबलडन का भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इस हमले में बंधक बनाए गए 20 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में इटली के 9 और जापान के 7 नागरिक शामिल हैं। बंधक बनाई गई एक भारतीय छात्रा की भी मौत हो गई थी। शुक्रवार को हुए हमले में 2 पुलिस अधिकारी भी मारे गए थे। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से FBI ने पूछताछ की है। हिलेरी से पूछताछ उनके विदेश मंत्री रहते हुए किए गए ईमेल्स के बारे में की गई है। हिलेरी साल 2009 से 2013 तक अमेरिका की विदेश मंत्री थीं। हिलेरी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ निजी सर्वर का इस्तेमाल किया क्योंकि ये उनके लिए आसान था। हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि उन्होंने सैकड़ों गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कल हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि किस दल को जीत मिली है। सत्ताधारी लिबरल पार्टी के गठबंधन और विपक्षी लेबर पार्टी में से किसी को बहुमत हासिल होने के संकेत नहीं मिले हैं। आखिरी नतीजों के मंगलवार के पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने सत्ता में बने रहने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा,
I can report that based on the advice I have from the party officials.
मेरे दोस्तों, आज की रात पार्टी अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमें भरोसा है कि अगली संसद में हम बहुमत के साथ गठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये थे मैल्कम टर्नबुल के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रविवार को हुए इस हमले में भीड़ भरे व्यावसायिक इलाके को निशाना बनाया गया। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यहूदी नरसंहार में जीवित बचे और शांति का नोबल पुरस्कार जीतने वाले एली विजिल का निधन हो गया है। वो 87 बरस के थे। विजिल का जन्म रोमानिया में हुआ था, लेकिन 1960 के दशक में वो अमरीका में बस गए थे। एक किशोर के तौर पर नाजी यातना शिविर में बताए गए अनुभवों को लिखने के बाद उन्हें काफ़ी शोहरत मिली थी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जर्मनी ने यूरो कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस के बोर्डो शहर में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने इटली को मात दी। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के जरिए हुआ। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। बात सबसे पहले बांग्लादेश की, जहां एक हिंसक तूफान के बाद अब खामोशी है, सन्नाटा है, शोक है, गम है और गुस्सा भी है। ये तूफान आया था शुक्रवार की शाम को, जब चरमपंथियों ने ढाका के एक रेस्तरां को निशाना बनाया और कई लोगों को बंधक बना लिया था। लगभग 12 घंटों बाद बंधक संकट खत्म हुआ, लेकिन 20 लोगों की जान लेकर। मरने वाले सभी विदेशी थे। उनमें से कोई बांग्लादेश में नौकरी करता था, कोई पढ़ता था और कोई राहत संस्था के लिए काम करता था, लेकिन अब वो सिर्फ एक लिस्ट हैं। लिस्ट ढाका हमले में मरने वाले लोगों की लिस्ट। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वात्सल्य राय से।
बांग्लादेश सदमे में है। शुक्रवार की रात जो राजधानी ढाका में हुआ वो बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ था। चरमपंथियों ने बेहद सुरक्षित गुलशन इलाके में एक नामी रेस्तरां पर हमला किया और 20 विदेशियों की जान ले ली। बांग्लादेश की धरती पर यह इस तरह का पहला हमला है और इसकी जिम्मेदारी कबूल की दुनिया की नाक में दम कर रहे इस्लामिक स्टेट ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा,
राजधानी गुलशन एक रेस्टोरेंटे हमला चला है, সেখানে অবস্থানরত নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের
আতঙ্কবাদীয় নে হামারি রাজধানী মে নির্দোষ আম লোগো পর হামলা কিয়া উনকি হত্যা কি হ্যায়। রমজান কে মহিনে মে জব মুসলমান দুয়া করতে হ্যায় উনহোনে হামলা কিয়া। ইয়ে না সির্ফ ধর্ম কি বলকি ইনসানিয়ত কি ভি খিলাফ ভর্জি হ্যায়। ইয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ পর বর্বর অর অমানবীয় হামলা হ্যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে শব্দ, हमले में मारे गए लोगों के सम्मान में बांग्लादेश में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इस हमले में 20 विदेशी नागरिकों और बांग्लादेश के 2 पुलिस अफसरों ने जान गंवाई। 12 घंटों तक चले बंधक संकट के बाद बांग्लादेश के कमांडो 13 लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे और इस दौरान उनकी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में 9 इतालवी, 7 जापानी नागरिकों के अलावा अमेरिका और भारत का भी 1-1 नागरिक शामिल है। इटली के प्रधानमंत्री मातियो रेंजी ने कहा है कि उनके देश के लिए ये दुख की घड़ी है लेकिन वो झुकेगा नहीं।
E davanti alla tragedia l'ennesima di un estremismo radicale,
कट्टरपंथी इस्लाम की एक और त्रासदी से हमारा सामना हुआ है। ये बहुत से हिस्सों में निर्दोषों का खून बहा रही है। मुझे लगता है कि ये समय है कि इटली एकजुट होकर दुख और दया का संदेश दे। आज हम रो सकते हैं, हम दुख और दया में रो सकते हैं, लेकिन हम अपना हौसला भी बुलंद कर सकते हैं, मजबूत इरादा और साहस दिखा सकते हैं कि जो लोग हर रोज़ इंसानी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। इटली पर हमला हुआ है लेकिन वो झुकेगा नहीं। ये थे मातियो रेंजी के शब्द। वही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हालात को गंभीर बताया है। घिनौने आतंकवाद की वजह से बहुत सी जिंदगियां चली गई हैं। इस घटना की वजह से जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालात बहुत खतरनाक हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के शब्द। दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट ने ढाका के रेस्तरां में हमला करने वाले 5 लोगों की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में मुस्कुराते चरमपंथियों के पीछे इस्लामिक स्टेट का काला झंडा देखा जा सकता है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में लगातार कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। एक के बाद एक धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों, समलैंगिक कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों और पुजारियों की हत्याएं हुई हैं और इन सब के लिए इस्लामी कट्टरपंथियों को जिम्मेदार बताया गया है।
और उधर यूरो कप क्वार्टर फाइनल में कल जब इटली की टीम जर्मनी के खिलाफ खेलने उतरी तो मैच से पहले इतालवी खिलाड़ियों ने ढाका हमले में मारे गए लोगों को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी जबकि कोलकाता में मृतकों की याद में मोमबत्तियां जलाई गईं। मरने वालों में भारत की एक लड़की भी थी, 18 बरस की तारुषि जैन। उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमले के बाद भारत के असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीते महीनों में सीमा पर हुई कुछ गिरफ्तारियों ने सुरक्षा चिंताओं को पहले से ही बढ़ा रखा है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर शनिवार को सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय और त्रिपुरा में सुरक्षा संबंधी हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमाओं पर चौकसी तेज कर दी गई है। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सख्त निगरानी रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच असम पुलिस ने राज्य के सभी थानों को अलर्ट करते हुए आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश जारी किया है। असम पुलिस के महानिदेशक मुकेश सहा ने अलर्ट की जानकारी देते हुए बीबीसी से कहा,
सतर्क इसलिए किया गया है कि जो घटना बांग्लादेश में हुई है और वो हमारा नेबरिंग कंट्री है, इसलिए हमें भी पूरा सतर्क रहने की जरूरत है। खतरा है वो नदी के रास्ते से ही आ सकता है, इसलिए हमें नदी का जो रिवर पुलिस को भी सेंटर करने की बात।
दरअसल सुरक्षा के नजरिए से असम काफी संवेदनशील राज्य रहा है। भारत की बांग्लादेश के साथ कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में असम की 284 किलोमीटर सीमा शामिल है। प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ और चरमपंथी संगठनों की समस्या के साथ पिछले कुछ सालों में यहां जिहादी संगठनों की सक्रियता ने सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह के सुरक्षा अलर्ट और सीमा पर कड़ी चौकसी के निर्देश के बाद भी क्या कोई आतंकी तत्व सीमा पार से इधर आ सकता है। ढाका स्थित कैफे में हुए चरमपंथी हमले की जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, जिसका लिंक जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश नामक चरमपंथी संगठन के साथ सामने आते रहा है। ये वही जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है जिसके कुछ सदस्य बर्दवान धमाके में शामिल थे और कुछ सदस्यों को पुलिस ने असम से गिरफ्तार किया था। ऐसे में बांग्लादेश में आईएस के हमले को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वरना ये यहाँ की सुरक्षा पर भारी पड़ सकता है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
ढाका हमले के बाद भारत में भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वात्सल्य राय। अखबारों के साथ क्या कुछ अखबारों में छपा है, कुछ ऐसी चिंताओं का जिक्र किया गया है क्या?
जी, चिंताओं के बारे में तो उतनी ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो भारतीय लड़की की मौत हुई है तारीशी, उसके बारे में ज़्यादातर अखबारों ने सुर्खियों में खबर दी है और इसके अलावा सारे अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। पहले पन्ने पर तो है ही
जी।
इंडियन एक्सप्रेस ने तो इसे बैनर खबर बनाया है, यानी पूरे
पन्ने पर फैला के।
और इसकी अखबार की सुर्खी कहती है कि ढाका की दहशत की रात में भारतीय समेत 20 लोग मारे गए। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बंधक बनाने वाले चरमपंथियों ने कम से कम 3 मांगे रखी थी, जिसमें कुछ चरमपंथियों की रिहाई की बात थी, बच निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता मांगा था और इस्लामिक स्टेट के तौर पर उन्हें पहचाना जाए, ये मांग रखी थी। इस अखबार ने तारीशी से जुड़ी 2 खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तारीशी को हो सकता है कि हत्या के पहले उसको यातना भी दी गई हो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि तारीशी ने कैफे से अपने घर फ़ोन किया था और बताया था कि वो टॉयलेट में छुपी हैं अपने दोस्तों के साथ और उनको लगता था कि सब एक एक कर मारे जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको पहली खबर बनाया है और अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक और भारतीय उस कैफे में मौजूद थे, उनका नाम सत्यपाल बताया गया है, वो डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन उन्होंने बांग्ला में बात की और खुद को बांग्लादेश नागरिक के तौर पर पेश किया और बच निकलने में कामयाब रहे। अखबार ने यह भी बताया है कि इस्लामिक स्टेट की न्यूज़ एजेंसी अमाक ने पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि 20 बंधक मारे गए हैं जिनमें विदेशी हैं। सरकार ने इसका ऐलान बहुत बाद में किया। द स्टेटमेंट्स ने भी इस खबर को पहली खबर बनाया है और प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की हैं शेख हसीना, उनके बयान को छापा है और इसमें ये कहा है कि इस्लाम के नाम पर लोगों की हत्याएं बंद होनी चाहिए। हिंदी के अखबारों ने भी ज़्यादातर ने इसको अपनी लीड खबर के तौर पर जगह दी है।
और क्या खबरें इसके अलावा जल्दी से?
इनके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर कहती है कि भारतीय अर्धसैनिक बल जो हैं वो गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। 9mm की गोलियों में 75% तक की कमी है, जिससे जो उनकी तैयारियां हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर बताती है कि फिजियोथेरेपी का जो बैचलर डिग्री का पाठ्यक्रम है उसमें अब रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे।
अच्छा।
और इसका पाठ्यक्रम जो तैयार किया है मोदी के योग गुरु की अगुवाई वाले एक पैनल ने तैयार किया है।
जाहिर है सवाल उठेंगे इसको लेकर।
जी बिल्कुल, ये बात भी अखबार ने लिखी है। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर बताती है कि दिल्ली के जो आला कॉलेज हैं वो सोमवार को दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी करेंगे। दैनिक भास्कर मैं देख रहा हूँ, इसमें जो 7वां वेतन आयोग आया है उसके जो अध्यक्ष रहे हैं सिफारिश करने वाले अशोक कुमार माथुर, उनसे बात की गई है और उनका कहना था कि उन्हें चिट्ठियां आती थी कि कसम है सैलरी मत बढ़ाना, बाबू काम नहीं करते हैं।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
और उधर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के यात्रियों को मौसम साफ होने तक सुरक्षित स्थानों पर रोके रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने एहतियात बरतते हुए चार धाम से जुड़े जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बीच पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में मलबे में दबे लोगों के शव निकालने का काम जारी है। आशंका है कि मरने वालों की संख्या 40 के करीब हो सकती है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश जारी है। चार धाम यात्रा पर भी इस बारिश का असर पड़ा है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोक दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के जवान रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। भारी बारिश के बीच बद्रीनाथ जाने वाली सड़क भी जगह जगह मलबा आने से लगातार अवरुद्ध हो रही है। बद्रीनाथ जाने वाले एक यात्री ने बताया,
यहाँ की जो मिलिट्री फौज है यहाँ से बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। भाई यहाँ से जितने लोग हमारे साथ करीबन 2000 लोग फंसे हुए थे, यहाँ से उनको पास किया है। यहाँ से वो हौले हौले अपने आगे आगे कर रहे हैं। आगे भी टैक्सी का बंदोबस्त किया है, जो यहाँ से नहीं मिले वो आगे से मिल जाएंगे।
चमोली जिले की पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के मुताबिक अवरुद्ध रास्तों को खोलने और यात्रा को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं।
ये NH50 निर्मल पैलेस के पास में जहाँ पे हमारा NH पूरा सा वॉश आउट हो गया था, हम लोग अभी उस जगह पे हैं। यहाँ पे अभी रेस्टोरेशन का काम जारी है, हम लोग रोड ही क्लियर करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पैदल मार्ग जो ऊपर से निकल के यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है।
इस बीच देहरादून में राहत कार्यों की समीक्षा की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया कि भारी बारिश की इन दो दिन की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहना सही नहीं। उनके मुताबिक हालात गंभीर हैं लेकिन नियंत्रण में हैं।
बिल्कुल पूरी तरीके से कंट्रोल में है। हम सामान्य तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे कई भाई मरे हैं, परिवार दब करके मरे हैं, दुखद है, मगर ऐसा नहीं है जिसके कोई घबराहट की बात हो। और जो ये कहा जा रहा है कि भयावह स्थिति है, कहीं ऐसी भयावह स्थिति राज्य में नहीं है।
सरकार मॉनसून के इस कहर से निपटने में अपनी कार्रवाई को लेकर पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि आपदा से निपटने में सरकार के पास कोई कार्य योजना ही नहीं थी। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट,
सरकार अपनी आपदा बचाने में लगी रही है। सरकार अपना आपदा प्रबंधन कर रही है कि हमारी सरकार कैसे बची रहे, कैसे हम शेष दिनों में इस प्रदेश की लूट खसोट करते रहे।
मौसम विभाग ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए अगले 48 घंटों तक स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन को मुस्तैद रहने को कहा है। गढ़वाल मंडल की प्रमुख नदियां भागीरथी, भिलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी उफान पर हैं। यही हाल कुमाऊं क्षेत्र की नदियों काली, सरयू, शारदा और कोसी का है। गंगा भी खतरे के निशान के करीब आ गई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी लोगों को सजग रहने को कहा गया है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
और दूसरी तरफ सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पिछले दो दिनों से खूब बारिश हो रही है। राज्य की राजधानी मुंबई में तो लोग भारी बारिश के कारण कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। रेल से लेकर सड़क तक के यातायात पर असर पड़ा है। कई इलाकों में पानी जमा हो गया है, लेकिन सूखा प्रभावित इलाकों में किसान इस बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ मुंबई से अश्विन अघूर।
भयंकर गर्मी से झुलसते और पानी की किल्लत से जूझते मुंबई को पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश से बड़ी राहत मिली है। बरसात अपने साथ कई मुसीबतें भी लेकर आई है। मुंबई के लोगों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है और कई जगह लोग घरों में घुसे पानी की वजह से भी परेशान हुए हैं। बारिश की चपेट में आकर पेड़ों के गिरने से कई जगह लोगों की गाड़ियां और मकानों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही सड़कों पर भी जाम लग गया है। गुरुवार सुबह से हो रही झमाझम बारिश के कारण मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। भारी बारिश के कारण शनिवार को हार्बर लाइन बंद हो गई, जबकि मध्य तथा पश्चिम रेलवे की गाड़ियां 15 से 20 मिनट देरी से चली। बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों के आवागमन पर असर होने की वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तीन दिन से जो बारिश हो रही है उसका पूरा असर मुंबई के तीनों जो मेन लोकल लाइन्स है उन पर पड़ा, और कम से कम 15 मिनट से ज्यादा 40 मिनट तक, या कहीं किसी किसी स्टेशन पर एक घंटा तक लोकल ट्रेनें लेट थी और उसका सीधा असर जो पड़ा, उसका जो दबाव पड़ा पूरे ट्रैफिक का, वो मुंबई के जो दो मेन रोड्स है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इन पर पड़ा।
रास्ते में गाड़ियां 10-10 मिनट तक हिल नहीं रही थी, लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर हुआ। नाला सफाई ठीक ठाक नहीं हुई ऐसा ही कुछ तो अभी दिख रहा है। और बारिश तेजी से होने का जो अनुमान है, इसके चलते बीएमसी और रेलवे ने भी कुछ उपाय करने चाहिए ताकि सामान्य लोगों को तकलीफ ना हो।
सिर्फ रेल यातायात ही नहीं, सड़क मार्ग भी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। शनिवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर तलासरी के पास खाड़ी पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से 4 घंटों तक यह हाईवे बंद था। मुंबई नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे तक दक्षिण मुंबई में 57.68 मिलीमीटर, पूर्व उपनगरों में 76.37 मिलीमीटर तथा पश्चिम उपनगरों में 73.80 मिलीमीटर बारिश हुई। मुंबई के रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कृष्णानंद घोसालीकर का कहना है,
मुंबई शहर के लिए हमने जो पूर्वानुमान दिया है कि आने वाले 24 से 48 घंटे तक, इनफैक्ट 72 आवर्स तक हमने ये कहा है कि आने वाले दिनों में जो है मध्यम से जोरदार बरसात होने की संभावना है, और बाकी जो है जैसे फिशरमैन वार्निंग है, जैसे मच्छीमारों के लिए जो वार्निंग्स है वो सब अपनी जगह पर दिए गए हैं।
राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। भयंकर सूखे की वजह से चर्चा में रहे मराठवाड़ा के लातूर जिले में हुई बारिश का असर ये है कि पिछले 4 सालों से सूखी हुई तेरणा नदी इस साल पहली बार बह रही है। कोकण के रत्नागिरी जिले में पिछले साल के मुकाबले दुगनी बारिश हो चुकी है। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर से बहने वाली पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 72 घंटे तक इन इलाकों में भी भारी बारिश होगी। खेती के लिए पानी का इंतजार करते किसान तो इससे काफी खुश होंगे, लेकिन शहरों में फिलहाल लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। अश्विन अघोर, BBC मुंबई।
और अब एक खास रिपोर्ट। बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव हुए और इन्हीं चुनावों में मसौढ़ी के बिर्रा पंचायत की मुखिया बनी कुलबदन देवी, जिनकी उम्र है 86 साल। उन्होंने चुनाव में 30 साल की युवा प्रत्याशी नजमा परवीन को कड़ी टक्कर दी। आखिर क्या वजह रही कि लोगों ने एक युवा के मुकाबले इतनी बुजुर्ग उम्मीदवार को चुना? सुनिए नीरज साहे की रिपोर्ट।
एक ओर जहां देश दुनिया में युवा नेतृत्व को लेकर बहस जारी है, वहीं बिहार की राजधानी पटना से करीब 60 किलोमीटर दूर मसौढ़ी अनुमंडल के बिर्रा पंचायत ने एक दूसरी ही तस्वीर पेश की है। 10 गांव वाले इस पंचायत की मुखिया 86 साल की महिला कुलबदन देवी बनी है। झुर्रियों से ढकी त्वचा और झुकी कमर वाली कुलबदन कहती हैं कि उनमें आज भी हिम्मत बाकी है। उन्होंने इस पंचायत चुनाव में लगभग 30 साल की युवा प्रत्याशी नजमी परवीन को शिकस्त दी। कुलबदन देवी के अनुसार,
पंचमा पास ही 86 वर्ष की उम्र है, मुखिया बन गई तो अच्छा से कर भाई, सब बूढ़ा बूढ़ी के सब चले भाई, होते न था वो तो कर ही नहीं, आखिरी हाई हिम्मत कर के हाँ घूम ले भाई, अभी हिम्मत है, हिम्मत हली तब ना हम ठड़ा बेलिए ना हम इधर दी तब ठड़ा होती है। अब जवानी में सब के कह ली तब कहली की तनी बुढ़ारी में तीर्थ न करी थी तब तनी यह तीर्थ करी थी।
5वीं पास कुलबदन देवी के पति किसान थे, भरे पूरे घर में बेटा पोता साथ रहते हैं। चुनाव में वृद्ध कुलबदन देवी की लाठी उनका पोता गौतम बना। वे चुनाव क्यों और कैसे लड़ी इस पर वे विस्तार से बताती हैं। वे कहती हैं कि
पोता के साथ प्रचार करे जाए, जमानी में सबके सेवा के लिए तो हमारे मन भेल न कि अपनी बुढ़ारी में सबके समाज के सबके सेवा करी, सबके हमारा सेवा करे में हम मन लग जाए, सबके एक नजर से हम ताके जमानी में करबे न के लिए झूठ सा बुढ़ारी में न करे, अब धर्म पर जय करे।
गांव वालों ने इनके नेतृत्व को स्वीकार किया है, उन पर पूरा भरोसा भी जताया है। अपनी मुखिया की वृद्धावस्था को पंचायत के कामों में बाधा पहुंचाने वाला भी नहीं मानते हैं। गांव की छात्रा रूपम कुमारी, व्यवसायी राघवेंद्र कुमार और मजदूर प्रभु मोची कहते हैं कि
क्योंकि वो सुरक्षा करेंगे और जनता का विकास करेंगे, इसलिए मैं उनको वोट।
काफी अनुभवी महिला है, खास करके गांव घर के जो प्रॉब्लम है, समस्या है, बखूबी जानती है। हमारे गांव में पहले से क्या प्रॉब्लम है, आज क्या प्रॉब्लम है, वो खूब अच्छी तरह से जानती है
कि हम लोग का बहुत दिने से उन्हें छितरा रहे समझला, और गाँव में वो समर्थन उनको हम लोग की है कि नहीं कम करिंदा रहेंगे।
बिहार में मई माह में राज्य स्तर पर हुए पंचायत चुनाव में ग्रामीण राजनीति के कई पहलू देखने को मिले। लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर आरोप प्रत्यारोप का भी खूब दौर चला। जाहिर है इससे बेर्रा पंचायत चुनाव भी अछूता नहीं रहा। वृद्ध मुखिया की क्षमता पर कई लोग प्रश्न चिन्ह आज भी लगा रहे हैं। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाले पीपला और बदरी बीघा गांव की कायनाथ रोजी और भुवनेश्वर प्रसाद यादव बताते हैं कि
बहुत एजेड भी हैं, 90 साल की हैं, तो वो क्या काम कर पाएंगी। पैसा मिला है इस कारण से भी बहुत सारे वोट दे दिए उसको।
अब काम करने लायक तो जॉब नहीं है, लेकिन करवा सकते हैं पोता से बेटा से।
तमाम आरोपों के बीच ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने का दावा 86 साल की महिला मुखिया ने किया है। अब देखना यह है कि वो अपने कामों से कितना बदलाव ला पाती हैं या उन पर रबर स्टाम्प भर रहने का आरोप लगता है। नीरज सहाय, BBC पटना।
और अब इसके बाद खबरें विंबलडन की, लेकर हाजिर हैं लंदन से अपूर कृष्ण।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से BBC हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन में कल छठे दिन आखिर वो उलटफेर हो ही गया जिसकी आशंका शुक्रवार को ही नजर आने लगी थी। दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में ही बाहर हो गए और उन्हें हराया भी किसी टॉप सीड के खिलाड़ी ने नहीं बल्कि दुनिया के 41वें नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के सैम क्वेरी ने। जोकोविच शुक्रवार को ही मुश्किल में नजर आ रहे थे जब इस मैच में वो दो सेटों से पिछड़ गए थे, लेकिन तब बारिश ने खेल रोक दिया। कल जोकोविच ने वैसे वापसी की उम्मीद दिखाई और तीसरा सेट 6-3 से जीत लिया। चौथे सेट में भी कड़ी टक्कर हुई और सेट टाई ब्रेकर में गया, लेकिन आखिरकार क्वेरी ने ये सेट अपने हाथ में लेकर जोकोविच का विजय रथ रोक दिया। जोकोविच कल मैच से पहले प्रैक्टिस में भी थोड़ी परेशानी में लग रहे थे। मैच के बाद उनसे पूछा गया कि क्या उनकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा, नहीं ठीक तो नहीं है, मगर इस पर अभी बात करना सही नहीं। मेरे विरोधी का खेल बहुत ऊंचे स्तर का था, वो जीत के हकदार थे। मुझे भी मौके मिले, टाई ब्रेकर में भी मैं लीड कर रहा था, पर मैं बॉल को उस तरह से नहीं खेल पा रहा था जैसा मैं चाहता था। नोवाक जोकोविच के शब्द। कल के मैच के बाद सैम क्वेरी ने कहा,
It's incredible, especially to do it here at Wimbledon, you know, the biggest tournament in the world, and I'm just so ecstatic right now, so happy, and
ये अविश्वसनीय है। विंबलडन दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। आगे क्या होगा मैं नहीं सोच रहा, मैं केवल एक एक राउंड करके खेल रहा हूँ। मैं इस राउंड से खुश हूँ और अगले का इंतजार कर रहा हूँ। दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी को मात देकर विंबलडन के अंतिम 16 खिलाड़ियों में जगह बनाने वाले अमरीकी खिलाड़ी सैम क्वेरी के शब्द। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। उन्होंने तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलमैन को सीधे सेटों में 6-3, 7-5, 6-2 से हराया। कल पांचवीं सीड के जापान के खिलाड़ी के निशिकोरी भी चौथे दौर में पहुंच गए, जहां अब उनका मुकाबला क्रोएशिया के नवीं सीड के खिलाड़ी मारिन चिलिच से होगा। महिलाओं के वर्ग में कल दो बार की विंबलडन विजेता पेत्रा क्वेटोवा दूसरे ही दौर में बाहर हो गईं। 10वीं सीट की खिलाड़ी क्वेटोवा को 35वें नंबर की रूस की एकेटरीन मकारोवा ने हराया। एंजेलिक कर्बर और 5वीं सीट की खिलाड़ी सिमोना हालेप भी आसानी से चौथे दौर में पहुंच गई हैं। भारत के खिलाड़ियों के लिए भी दिन अच्छा रहा। कल सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दोनों ने अपने अपने डबल्स मैच जीत लिए। रोहन बोपन्ना और रोमानिया के उनके जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जा ने स्लोवाकिया और चीन के खिलाड़ियों की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-5, 6-2 से हरा कर तीसरे दौर में जगह बनाई। वहीं पिछले साल की विंबलडन विजेता जोड़ी सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने जर्मनी की खिलाड़ियों की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से मात देकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अपूर्व कृष्ण, BBC विंबलडन।
और इसके साथ ही कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ चला है। इससे पहले कि मुख्य समाचार सुने, आपको बता देते हैं BBCHindi.com की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, ढाका हमले में किस देश के कितने लोग मारे गए। ये सबसे बड़ी खबर अभी चल रही है। इसके साथ ही एक खबर है, जुल्म और यातना के खिलाफ एक बुलंद आवाज हुई खामोश, यहूदी नरसंहार में जीवित बचे और नोबेल पुरस्कार विजेता एली विजेल के निधन की ये खबर है। पढ़नी है तो जरूर आइए BBCHindi.com के पन्ने पर। और अब मुख्य समाचार।
BBC समाचार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक कैफे में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। इस हमले में बंधक बनाए गए 20 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से एफबीआई ने पूछताछ की है। हिलेरी से पूछताछ उनके विदेश मंत्री रहते हुए किए गए ईमेल्स के बारे में की गई है। ऑस्ट्रेलिया में कल हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत मिलने के संकेत नहीं मिले हैं। इराक की राजधानी बगदाद में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद। कार्यक्रम होगा विश्व भारती। फिलहाल अशोक कुमार को अनुमति दें। नमस्कार।